भूरी रामचंद्र भगवान की, रघुपति चरण कमल सिरी नाई। गया उ गगनया पनि गति पाई, तो श्रोता बंधुओं राठौर कैसेट का सबरी मिलन का ये भाग दो चल रहा है। मैंने भाग एक में आपको बताया कि सबरी जो है वो मतंग ऋषि के आश्रम में कुटिया बनाकर रहने लगी, मगर यहाँ पर कुछ शंकाकार लोग शंका करते हैं कि मतंग ऋषि में ये सबरी कहाँ से आई। तो देखिए अनेका अनेक विद्वानों के अनेका अनेक मत हैं, और अब ये बताना कि कौन सा मत सही है कौन सा मत गलत है ये तो बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जिस मत से जिस व्यक्ति को संतुष्टि हो जाए बस उसके लिए वही मत उचित है। तो कुछ विद्वानों का मत है कि एक भीलों के राजा थे जिनका नाम था सबर। सबर बड़े सबरदार थे बेचारे, भीलों के राजा जिनका नाम था सबर, और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सबरी। तो अब सबरी ने अपना घर कैसे त्यागा? जब धीरे धीरे राजा सबर की पुत्री सबरी विवाह योग्य हुई तो माता ने सुंदर लड़का देखा और विवाह की तैयारियां होने लगी। तो ये भील लोग थे, इनमें कुछ ऐसा नियम था कि बारातियों का जब स्वागत किया जाता था तो उनके भोजन के लिए बहुत सारे जंगली जानवर काटे जाते थे, उनका मांस पकाया जाता था और उससे ही बारातियों का स्वागत किया जाता था। तो आज बहुत सारे जंगली जानवर हजारों की तादाद में, क्योंकि भाई राजा सबर की बेटी सबरी का विवाह है ना, हजारों जानवर जो हैं वो लाला के बांधे गए। सबरी की माँ सबरी के बालों को बांध रही है। अब सबरी कतई अबोध है और बचपन से ही ये कुछ धार्मिक विचार की थी, दयालु हृदय की थी। तो माँ जब अपनी पुत्री सबरी के बाल बांध रही है तो पूछा बड़े कोमल भाव से सबरी ने कि मैया आज ये मेरे बालों को आप क्यों बांध रही हैं? माँ ने कहा बेटी आज तेरा विवाह है। कहा मैया विवाह है तो विवाह में इतने सारे ये जंगली जानवर क्यों दरवाजे पर लाए गए हैं? कहा तुझे नहीं मालूम बेटा, जब तेरी शादी होगी बहुत सारे बराती आएंगे और जब बरातियों का भोजन बनाया जाएगा तो उनके लिए ये जानवर बुलाए गए हैं। कहा मैया बरातियों के भोजन से इन जानवरों का क्या संबंध है? कहा बेटा जब इनको काटा जाएगा, काट के जब इनका मांस पकाया जाएगा बनेगा, तभी तो बरातियों का स्वागत होगा और तभी तेरी शादी होगी। हैं माँ मेरी शादी के लिए ये इतने निर्जीव अबोध जानवर काट दिए जाएंगे? कहाँ बेटी, सबरी अपने मन में विचार करती है कि मेरे विवाह के लिए इतने जीव की हत्याएं की जाएंगी, मैं विवाह ही नहीं करूंगी और रात को भाग जाऊंगी, ना मैं यहाँ रहूंगी, ना मेरा विवाह होगा और ना इतने जानवर काटे जाएंगे। इन्हीं विचारों से सबरी वहां से भागकर राम की भक्ति में लीन होकर और मतंग ऋषि के आश्रम से होकर आज अपनी कुटिया में राम नाम की दीवानी बनकर समय बिताने लगी। देखिए श्रोता बंधुओं, आज सबरी लालसा लगाए है, बाल्यावस्था से आज वृद्धावस्था आ गई है। कितना अलौकिक प्रेम है सिवरी का, रोज प्रातः काल उठती है, नीलों देखती जाती है। ऐसा तो नहीं है कहीं आकर मेरे राम बैठ गए हों। फिर भाव आ जाता है कि मेरा निवास स्थान जहां पर है ये बेरों का वन है, बेरों में बड़े बड़े कांटे होते हैं, ऐसा ना हो ये कांटे यहाँ रह जाएं, मेरे राम कभी आए उनके पैर में कोई कांटा लग जाए। इसलिए रोज झाड़ू लगाती है, मीलों झाड़ू लगाती चली जाती है। उसके बाद छोटी सी डलिया लेकर एक एक कांटे को चुन चुन कर अपनी डलिया में रख कर मीलों दूर फेंक कर आती है कि कहीं एक भी कांटा रह गया तो मेरे प्रभु के पैरों में चुभ जाएगा। आज वो राम की दर्श की लालसा लिए हुए सिवरी बाल्यावस्था से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था में आ गई है। अब तो उसे ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी लालसा लगी है कि जरूर आएंगे एक दिन मेरे प्रभु राम, इस गरीब की कुटिया पर जरूर आएंगे। और उधर भक्तों के बस में हो भगवान सिवरी घर आए, भगवान सिवरी घर आए, श्री राम सिवरी घर आए, भक्तों के बस में हो भगवान सिवरी घर आए। भगवान सिवरी घर आए, श्री राम सिवरी घर आए, बस में ओ भगवान सिवरी घर आए, बहुत से विद्वान लोग गाते हैं बड़ा प्रेम से कि कैसे आए भगवान राम सिवरी के घर, जेपी भैया कैसे आए। अरे सुन लो मेरी कहानी, दशरथ के दोनों प्यारे है, एक दिन का किस्सा सिवरी के घर पधारे। सुन लो मेरी कहानी, देखिए सुन लो मेरी कहानी, दशरथ के दोनों प्यारे है, एक दिन का किस्सा सवरी के घर पधारे। मारे खुशी के सिवरी फूली नहीं समाई, क्यों करके मेरे घर में आए हैं दोनों भाई। क्या लाऊं क्या खिलाऊं ये सोचती थी मन में, कुछ सोच करके दौड़ी जा पहुंची एक वन में। बेरों को तोड़ती थी चक चक के देखती थी, मीठों को पास रखती खट्टों को फेंकती थी। फिर जल्द जल्द सबरी वन से जो घर को लौटी, बेरों को सामने रख भगवान से है बोली, स्वीकार कर लो भगवान धन भाग्य है हमारे। जंगल से जाके लाई फल वास्ते तुम्हारे, फल राम ने उठाया लक्ष्मण ने मुड़ के देखा, खाएंगे भैया कैसे फल लाई है ये जूठा। और क्या होता है, लक्ष्मण ने नहीं खाया, फेंक दिया। और जब प्रभु ने जाने की बात कही तो देखिए आज सवरी प्रभु से कहती है क्या, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अरे आज वही राम, वही राम, वही विद्वानों के राम, मतंग ऋषि के राम, जटायु के राम, जानकी के राम, दशरथ के राम, कौशल्या के राम आ गए। कहाँ आ गए? अरे आज सबरी के मन की न पूछो, वारी दीवानी सबरी, आज तेरे भाग की लाटरी खुलने वाली है। अरे आज सबरी के मन की न पूछो भैया राम शरण जी, अरे आज सबरी के मन की न पूछो, राम आए हैं सबरी के द्वारे, आज सबरी के मन की न पूछो, राम आए हैं सबरी के द्वारे, जो हैं सारे जगत के नियंता, जो हैं सारे जगत के नियंता, भीलनी की कुटी में पधारे, पूछो राम आए हैं सबरी के द्वारे, आज सबरी के मन की न पूछो, राम आए हैं सबरी के द्वारे, जो हैं सारे जगत के नियंता, भीलनी की कुटी में पधारे। प्रभु राम आ गए, भीलनी की आंखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुंचे, लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुंचे, अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान आप ही आ पहुंचे, तरह मिली न से भैया पुतुलाल भिलनी इस तरह मिली इनसे जिस तरह धर्म धर्मात्मा से जिस तरह धर्म धर्मात्मा से यूं कहिए इस तरह मिली जीवात्मा ज्यों परमात्मा से पत्तों के आसन पर सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है मेहमानी के कुछ बेरों को दलिया में भर भर लाती है हर है आज वो प्रभु राम जब सबरी के यहां पहुंचे बड़े प्रेम से झाड़ कर गुहार कर जैसे वो स्वाति बूंद के जल के लिए पपीहा तड़पता है ना वैसे तड़पती हुई वो सबरी राम के बिना जब राम को देखती है पागल सी हो जाती है अरे क्या लाऊं कहां जाऊं क्या खिलाऊं अपने इष्ट देव को क्या खिला दूं राम को क्या करूं हे राम क्या करूं पागल सी हो गई राम को चटाई डालकर बिछा देती है भाग पड़ती है वहां से भाग पड़ी और कहां पहुंची भैया बेरों के वन में पहुंची तो देखिए यहां पर एक प्रकार से तो बेर झूठे भी थे और एक प्रकार से बेर झूठे नहीं भी थे झूठे कैसे थे और नहीं थे कैसे थे कि भाई जैसे आप किसी बाग में जाते हैं तो बाग का जो रखवैया होता है रखवाली करने वाला वो कह देता हाँ भैया उस पेड़ के फल मीठे हैं उस पेड़ के फल खट्टे हैं या देखा कि भाई पता लगाना है कि इस फल पेड़ के मीठे हैं या नहीं तो अपना एक पेड़ का एक फल तोड़ा और पता लगा लिया खटुआ पेड़ है या मिठुआ पेड़ है तो उसी हिसाब से सबरी बेर के वन में गई हजारों पेड़ थे अब पता कैसे लगता उसे क्योंकि वो तो चाहती है अपने प्रभु राम के लिए बिल्कुल मीठे मीठे फल ले जाऊं तो एक पेड़ का एक फल तोड़ती है और पता लगाती है इसके फल मीठे हैं या खट्टे हैं अगर मीठा फल निकलता है तो 10-20 पेड़ उस पेड़ के तोड़ लेती है और नहीं तो आगे बढ़ जाती है और फिर एक जब आगे बढ़ती है देखती है खट्टा है तो चक्कर के उसको फेंक देती है आगे बढ़ जाती है तो इस भाव से तो बेर झूठे नहीं थे अगर आप दूसरे भाव पर आ जाएं तो बेरों को तोड़ती है और चखती है एक एक बेर को एक एक बेर को चक्कर देखती है कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बेर खट्टा आ जाए मेरे प्रभु के लिए इस भाव से झूठे कर करके वो सारे बेर जो है एक डलिया में रखकर प्रभु राम के पास पहुंची और कहती है स्वीकार कर लो भगवान धन भाग्य है हमारे आहा स्वीकार कर लो भगवान धन भाग्य है हमारे जंगल से जाके लाई फल वास्ते तुम्हारे स्वीकार कर लो भगवान धन भाग्य है हमारे स्वीकार कर लो भगवान धन भाग्य है हमारे जंगल से जाके लाई फल वास्ते तुम्हारे फल राम ने उठाया लक्ष्मण ने मुड़ के देखा। अभिलाष भैया फल राम ने उठाया, लक्ष्मण ने मुड़ के देखा, खाएंगे भैया कैसे फल लाई है ये जूठा, खाएंगे भैया कैसे फल लाई है ये जूठा। अरे सबरी लाई लाई सबरी लाई, और लाने के बाद प्रभु के आगे रख दिए। प्रभु तो उनको उठा उठा कर खाने लगे, लक्ष्मण मुंह बनाने लगे, हैं ये तो लगता है भैया बिरादरी से अलग हो गए, अरे इस भीलनी के झूठे बेर खा रहे, मैं नहीं खाने वाला। राम भैया खाते हैं पुत्तू भैया, और लक्ष्मण कोने से ढका ढक फेंकते जाते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है प्रभु राम ने मन में सोचा कि लक्ष्मण ने हमारे भक्त का अपमान किया है, तो वही जूठे बेर जो फेंके थे वो जाकर द्रोणागिरी पर्वत पर सज्जीवन भूति बने। प्रभु ने कहा कि देख मेरे भक्त के अपमान का फल लक्ष्मण, यही जूठे बेर जब आएंगे तब तेरे प्राण बचेंगे अन्यथा नहीं, ऐसा विद्वानों का मत है। तो श्रोता बंधुओं, आज जिस समय राम खाने लगे और लक्ष्मण फेंकने लगे, राम का एक एक खाया हुआ बेर यानी सबरी के प्रेम भाव से लाया हुआ एक एक बेर जब राम के शरीर में जा रहा है, तो समझ लीजिए सबरी को एक एक वरदान प्राप्त होता जा रहा है कि फल उठा करके जब राम खाने लगे। हाँ मेरे सुनने वाले श्रोता बंधुओं, फल उठा करके जब राम खाने लगे, फल उठा करके जब राम खाने लगे, तो बुढ़िया सबरी को वरदान जाने लगे। फल उठा करके जब राम खाने लगे, फल उठा करके जब राम खाने लगे, बुढ़िया शिवरी को वरदान जाने लगे। तब तब तो सबूरी ने दामन पकड़ ही लिया, तब तो सबूरी ने दामन पकड़ ही लिया, गिर के भगवान के चरणों में यूं कहा। अरे भगवान ने जब फल खाए, शिवरी को वरदान मिलना शुरू हुए, शिवरी एक टक भगवान की आंखों में आंखें मिलाए, उनके रूप का दर्शन कर रही है। और जैसे ही प्रभु राम इधर उधर हटते हैं तो सबरी कहती है, नाथ हटो मत, जहां हो वहीं ठहरे रहो, आपका रूप उसका दर्शन मुझे करने दो।
जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम,
ठहरे रहो,
तमन्ना यही है।
पुतलाल,
अरे अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो रामा, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी भी हमने जी भर के देखा नहीं है।
उसके बाद श्री भगवान की सेवा करके श्रोता बंधुओं प्रभु राम के सामने खड़ी हो जाती है। और बाबा तुलसीदास अपने शब्दों में क्या लिख रहे हैं चौपाइयों के माध्यम से,
सबरी देखी राम ग्रह आए मुनि के वचन समुझे जिए भाए। सबरी देखी राम ग्रह आए मुनि के वचन समुझ जिए भाए। सरस जलोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपताई। प्रेम मगन मुख बचन नया पुनि पुनि पद सरोज श्री नावा।
आज श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा पुनि पुनि पद सरोज सिरिनावा।
आसादर जलले चरण पखारे सादर जलले चरण पखारे। पुनि सुंदर आसन पै थारे प्रेम मगन मुख बचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिरी नावा। कंद मूल फल सरस्यति दिए राम कहानी।
बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं
कंद मूल फल सरस्यति दिए राम कहानी।
कंद मूल फल सरस्यति कंद मूल फल सरस अति सरस मीठे दिए राम कह आनी।
कंद मूल फल सरस्यति और दिए राम कह आनी।
प्रेम सहित प्रभु खायऊ बार ही बार बखान। या पति राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति राम चंद्र की जय।